for that or for the school.
رمضان مبارک کی مخصوص عبادتوں میں سے عبادت شب قدر کی عبادت ہے. شب قدر کی فضیلت میں عباد مبارک مطالعہ نے اس نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے, اس کا نام ہی ہے سورۃ القدر. اس کے علاوہ حدیث شریف میں فضیلتیں والد ہوئی ہیں. قدر کے کیا مانا ہوتے ہیں, اس کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا, قدر کے مانا ہوتے ہیں قدر و منزلت والے, شرف اور عزت والے. جن کا نام شب قدر وجہ سے رکھا گیا, اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت والے ہوتے ہیں. بعض حضرات نے ایک دوسرا معنی بتلایا کہ قدر اس لیے نام رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل قدر کتاب قرآن شریف, قابل قدر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور قابل قدر امت کے لیے نازل فرمایا, یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت ساری قدر والی چیزیں شامل ہو گئی, قابل قدر کتاب, قابل قدر رسول اور قابل قدر امت. امت کی بڑی فضیلتیں والی چیزیں روایت ہو گئی. ایک تیسرا معنی بھی آتا ہے قدر کے, وہ ہے تقدیر. تقدیر کہتے ہیں اللہ پاک مطالعہ میں بندوں کے حالات سے متعلق فیصلے کو ہمارا رکھے ہیں, جس کو تقدیر کہتے ہیں. تو فیصلے کو وہ ٹال نہیں سکتا, کہتے تقدیر نہیں بدل سکتے. یہ تقدیر میں لکھا تھا, ایسا تقدیر میں ہونا تھا. بندہ جب کوشش کر کے کسی چیز کو نہیں حاصل کر پاتا, کہا جاتا ہے اس کی تقدیر میں یہی ہے. لیکن بغیر کوشش کیے اگر نہیں پائے تو یہ بات الگ, کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی, کوشش کرنے کے باوجود کوئی آدمی طاقت سے نہیں کر سکا, تو اس کو تقدیر بولتے. اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے فیصلہ فرما دیا. تبدیل قدر کے معنی تبدیل کے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کے بارے میں جو تبدیل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس کو فرشتوں کے سپرد کہتے تھے. فرشتوں کو مدبرات امر کہتے ہیں اور وہ چار فرشتے وہی بڑے بڑے مشہور ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ فرشتے روزی اور بارش اور موت حیات کے بارے میں بندوں کے امور انجام دیتے ہیں. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا سب لوگوں میں پوچھ میں لکھا جا چکا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقل کرا کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس رات میں یہ امور طے کیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں کی موت ہوگی, اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے بچے پیدا ہوں گے, اور اس سال میں کتنی بارش ہوگی. یہ ساری چیزیں لکھی جاتی, لکھ کے دور محفوظ کے نقل کر کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب وہ فرشتے اس کو پورے سال میں انجام دیتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو کہا گیا لیلۃ القدر, تقدیر والی رات. اور دوسرے معنی جو بتائے گئے ہوں, لیلۃ القدر اس امت کو عطا کی گئی اور باقی کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. کیوں عطا کی گئی؟ اس کے لیے رجوع اور سبب ہے تابعی کے حوالے سے. تابعی تفسیر کی عربی کی تفسیر کی کتاب ہے, उसने सुबह के जहर में मुझे बतलाई गई कि बड़ी तारीख के शऊन नामी एक आबिद का तस्करा किया गया, जिनकी जिन्होंने हजार महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और अल्लाह की इबादत की। जो सहाबा किराम के दरमियान में तस्करा हुआ तो उन्होंने अपने अमल को कम समझा कि हम लोग उनके बराबर पहुंच ही नहीं सकते कि हजार महीने जिसके 83 साल बनते हैं, 83 साल 4 महीने सवा 83 साल उनके बराबर ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्र ही 100 के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बद्र नाजिल फरमाई जिसमें लैलतुल कद्र की फजीलत बता दी कि एक रात की फजीलत जो है हजार महीने से अफजल है। एक दूसरी रिवायत में कुतुबी के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पिछली उम्मतों की उम्रें पेश की गई, बताया गया कि पिछली उम्मतों में लोग 400 साल 500 साल 1000 साल से जिंदा रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्र को जब देखा तो दिल में खौफ महसूस हुआ कि मेरी उम्मत उनकी बराबरी नहीं कर सकती। अमल खौफ हुआ, अंदेशा हुआ, ये मलाल हुआ कि 1000 साल 500 साल उम्र है उसके बराबरी अमल में कैसे कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कद्र नाजिल फरमाई जिसमें लैलतुल कद्र की फजीलत वाजिब है। एक तीसरी रिवायत जिससे की और है इसमें यह है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 बरगुजीदा बंदों का तस्करा फरमाया। चारों के चारों नबी हजरत यूब अलैहिस्सलाम, हजरत सिद्दीक अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये चारों लोगों का तस्करा करने के बाद फरमाया ये अल्लाह के ऐसे बंदे थे जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की और एक लम्हा के लिए भी नाफरमानी नहीं, यानी 80 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वो इबादत से मुराद ये नहीं कि नमाज में ही मशगूल रहे, अल्लाह ने जो काम उनको साथी फरमाए थे उनको अता किए थे उसकी पाबंदी करते थे, नाफरमानी कभी नहीं किया 80 साल तक। ऐसा हमारा 1 घंटा भी नहीं गुजरेगा वे नाफरमानी के, मस्जिदों में भी नाफरमानी हो जाती है बताने की जरूरत नहीं। 80 साल तक उनसे कोई नाफरमानी नहीं हुई। सहाबाए किराम के दरमियान में जब ये बात आई तो सबने अपने अपने अमल को कम समझा और ये सोचा कि उनकी बराबरी तो नामुमकिन है। अगर जिब्रील अमीन ये सूरह लेकर आए और ये बतला दिया कि ये उम्मत उनसे बढ़ सकती है अमल में, एक रात की मेहनत इबादत से उनकी पूरी 83 साल, उन्होंने तो 80 साल इबादत किया था, ये 83 साल का स्वभाव हासिल करेगी। शब कद्र अदा करने की ये हिम्मतें हैं, ये वजूहत और अस्बाब है कि अल्लाह ताला इस उम्मत की कद्र और मंजिलत बढ़ाना चाहते हैं तो हासिल करने वालों के लिए। शब कद्र रमजान की अगली रश्मे में है और अल्लाह तआला ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पोशीदा वजाहत नहीं करवाई लेकिन थोड़ा बहुत करीब कर दिया। मैंने जब किसी एक शायरी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शब कद्र को कहाँ तलाश करें, यानी कब तलाश करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि रमजान के महीने में तलाश करो। फिर उन्होंने और सवाल बढ़ाया, रमजान के अखीर अशरे में तलाश करो। फिर और सवाल किया कि अखीर अशरे में कौन सी रात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 रातों में हुआ मुमकिन है 7 रातों। फिर उन्होंने और वजाहत चाही आखिर 7 रातों में से कौन सी रात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया ही बात थी, पता नहीं था, बता दी जाती तो फायदा हो जाता है, इसको वजाहत कर दी जाती कि भाई यही रात है। तो जो लोग इसके मुतय्यन करने में मुतय्यन करते हैं वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले और अल्लाह के फैसले की मुखालफत करते हैं, मुतय्यन करके नहीं रखते। जिसकी जिसके मुतय्यन ना करने में ही बहुत सारे फायदे हैं, है मुतय्यन तौर पर कैलेंडर वाले 27 को लिख देते हैं, उनको हो सकता है वही आए, वो अल्लाह के रसूल को वही नहीं आई, और उनको लिख के आ गए कि 26 रमजान में 27 शबे बद्र है, उनको वही आ गई, मुतय्यन करके नहीं रखते। सात रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सात रातों में जिसने मस्जिद वजारत चाही उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को भी नहीं बताया कि सात रातों में से भी कौन सी रात है। तो इसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। तकदीर के बारे में एक अहम उसको समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ छुपा के रखती है अपने रसूल से या बंदों से, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह की जात के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बंदों के उनका हाल कैसा होगा, उनका जो है जवान कैसी मुँह कैसी, अल्लाह ने तकदीर में रखा है, इसको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से खुद शबे कदर को जब अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है, उसको भी पीछे नहीं पड़ के नहीं पूरा भाग लगा के नहीं, और उसको 27 एक शब्द ने उसको बुरा भाग करके तय कर दिया, कहते हैं कि में जो है 9 हरफ आते हैं और सूरह कद्र के अंदर 3 मरतबा कद्र का तस्करा आया है, 9 × 3 = 27 के लिए 27वीं शब कद्र मैथमेटिक्स हो गई जो पुरानी करी कि उनको जो है पूरा भाग करके 27वीं को फिक्स कर दिया। ये बात अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला की बात ऐसे बनते हैं जिन्होंने 27वीं को उसको पाया या आकर 27वीं रही, उनको 27वीं में तलाश करने पर मिल गई अलामत के बाद अलामत, लेकिन उसके पीछे पड़ना गोया कि तकदीर के पीछे पड़ना है और जिससे मना किया गया है। खैर, इसके पोशीदा रखने में बहुत सारी हिकमतें हैं। पहली हिकमत ये है कि अगर मुतय्यन कर दी जाती शबे कद्र यही रात है तो बंदा सिर्फ उसी रात को इबादत करता, बाकी रातों को इबादत नहीं करता, सुस्त पड़ जाता, काहिल पड़ जाता, तो बाकी दीगर रातों की फजीलत को हासिल नहीं कर सकता। बंदा तो शबे कद्र मिल गया, क्या जरूरत है? तो कम अज कम अजमे चाहिए कि सूरत में उसको मजीद रमजान की और रातों में इबादत करने का मौका मिल जाता है, एक हिकमत तो यह है। दूसरी हिकमत यह है, अगर खुदा नखास का मालूम होता कि यही शबे कदर है और एक आदमी की छूट जाती तो वो मायूस हो जाता, और मायूस होने के बाद वो किसी रात में फिर इबादत नहीं करता, दो हिकमत होगी। तीसरी हिकमत यह है कि जिस तरह से फजीलत वाले मकामात होते हैं, अवकाश होते हैं, उसमें अजर सवाब पढ़ा दिया जाता है, वैसे ही उसमें अमल न करने, खता करने, गुनाह करने का मौका भी बढ़ा दिया जाता है। चुनाचे आप खटमल और चींटी जीता या कीड़े मकोड़े को आप हरम के अलावा उन्हें मारो, आपके ऊपर कुछ भी नहीं, हरम में जाके मार के दिखाइए, दम लाजिम हो जाएगा। इसी तरह से मस्जिद के अंदर कोई आदमी गुनाह करे, बाहर गुनाह करे, मस्जिद में गुनाह करने का मौका बढ़ जाएगा, हरम शरीफ में गुनाह करने का मौका और पड़ जाएगा, जैसे सवाब पड़ जाता है। इसी तरह से रातों के अंदर मकाम अवकाश के अंदर, भाई अवकाश में रात दिन भी आता है, रमजान मुबारक में गुनाह आम महीनों के मुकाबले में ज्यादा गुनाह साबित होगा, मौका उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से शबे कद्र के अंदर गुनाह और रातों के गुनाहों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाएगा उसका मुबारक। तो बाद आधी गुनाहगार या इंसानी की फितरत कह लीजिए जो गुनाह से बार गुनाह आने वाली है, उसके लिए कद्र और बगैर कद्र के माने कुछ नहीं रखते, उस रात में वो भी गुनाह कर जाता, तो कम से कम ना मालूम की सूरत में जानबूझ कर तो उसमें नहीं गुनाह करेगा, इस वबाल से बच जाएगा। इस वबाल से बचने के लिए वो यही इसको कृपा दिया गया, वरना कह लीजिए कि शबे कद्र की नाकदरी हो जाती है, और आज भी हो रही है, आज जानबूझकर नहीं हो रही है, आज बगैर जाने हुए हो रही है, अखीर अशरे में है किसी न किसी रात में, और अखीर अशरे की सारी रातें पामाल हो रही है, बताने की जरूरत नहीं कहाँ पामाल हो रही है, किस सूरत में पामाल हो रही है, आज भी नकदी हो रही है बगैर जाने हुए, और उस सूरत में जान बोझ करके मुक्ति नकदी होती उसका अवान और सकता होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा रखा हिम्मतों और मुस्लिम।